द्वितीय उच्छ्वास। मैं तेजी से बढ़ा जा रहा था। भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतराते मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत कहाँ होती है। मैं एक प्रकार से आंख मूंद कर चल रहा था। इसी समय एक क्षीण कोमल कंठ ने पुकारा, भट्ट, ओ भट्ट, इधर देखो, मुझे पहचानते हो? इस आवाज ने मुझे चमका दिया। इस सुदूर स्थान ईश्वर में मुझे पहचानने वाला यह कौन है? भागते हुए घोड़े को वल्गा जिस प्रकार रोक देती है, उसी प्रकार मेरी दौड़ती हुई विचारधारा को इस आवाज ने रोक दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक नातिकमनीय मूर्ति रमणी मुझे आवाज दे रही थी। उसके मुखमंडल पर तारुण्य था, परंतु उसकी दीप्ति धुंधली हो गई थी, जैसे धुआं उगलती हुई दीपशिखा हो। उसकी आंखें संध्या के धुंधले प्रकाश में चमक रही थी। उनके किनारों पर साफ ही दिख जाने वाली काली रेखाएं उस चमक को अद्भुत नहीं कर पाती थी। वह एक पान की दुकान पर बैठी थी। ऐसा लगता था कि वह पान कम बेच रही थी, मुस्कान ज्यादा। मुझे पहचानने की शक्ति का गर्व था। मैं हंसने वाली रुलाई और रुलाई वाली हंसी पहचानने में अपने को सिद्धहस्त समझता था, पर यह हंसी एक विचित्र प्रकार की थी। उसमें आकर्षण था पर आसक्ति नहीं थी, ममता थी पर मोह नहीं था। मैं उसकी दुकान की ओर अनायास ही खींच गया और उसे पहचानने की कोशिश करने लगा। वह बोल उठी, भट्ट, तुम नहीं पहचानते? अरे, यह तो निपुण क्या है। मैंने एक क्षण तक उन्मथित सा, भ्रांत सा, निसंग सा खड़ा रहा, फिर एकाएक चिल्ला उठा, अरे न्यूनिया, न्यूनिया, निपुणिका का प्राकृत नाम है। मैं उसके प्राकृत रूप से ही ज्यादा हिला हुआ था। निपुणिका ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे डांटा, हल्ला क्यों करते हो, धीरे धीरे बोलो। और फिर उसने एक आसन सरकाते हुए कहा, बैठो, पान तो खा लो। मैं बैठ गया। निपुणिका का संक्षिप्त परिचय यहाँ न देना चाहिए, दे देना चाहिए। निपुणिका आजकल की उन जातियों में से एक की संतान है जो किसी समय अस्पृश्य समझी जाती थी, परंतु जिनके पूर्व पुरुषों को सौभाग्यवश गुप्त सम्राटों की नौकरी मिल गई थी। नौकरी मिलने से उनकी सामाजिक मर्यादा कुछ ऊपर उठ गई। वे आजकल अपने को पवित्र वैश्य वंश में गिनने लगी हैं और ब्राह्मण क्षत्रिय में प्रचलित प्रथाओं का अनुकरण करने लगी हैं। उनमें विधवा विवाह की चलन हाल ही में बंद हुई है। निपुणिका का विवाह किसी कांदवी वैश्य के साथ हुआ जो भड़भूजे से उठकर सेठ बना था। विवाह के एक वर्ष बाद भी नहीं बीतने पाया था कि निपुणिका विधवा हो गई। मुझे यह मालूम नहीं था कि विधवा होने के बाद निपुणिका को क्या दुख या सुख झेलने पड़े थे, परंतु वह घर से भाग निकली थी। मुझसे अपने पूर्व जीवन के विषय में उसने इससे अधिक कुछ भी नहीं बताया था, परंतु उसके बाद की कहानी मेरी कुछ जानी पहचानी हुई है। निपुणिका जब पहले पहल मेरे पास आई थी, उस समय मैं उज्जैनी में था। मैं एक नाटक मंडली का सूत्रधार था। निपुणिका ने मंडली में भर्ती होने की इच्छा प्रकट की और मैं राजी हो गया था। निपुणिका बहुत अधिक सुंदरी नहीं थी। उसका रंग अवश्य शेफालिका के कुसुम नाल के रंग से मिलता था, परंतु उसकी सबसे बड़ी चारता संपत्ति उसकी आंखें और अंगुलियां ही थी। अंगुलियों को मैं बहुत महत्वपूर्ण सौंदर्योपादान समझता हूँ। नटी की प्रमाणांजल और पाठक मुद्राओं को सफल बनाने में पतली छरहरी अंगुलियां अद्भुत प्रभाव डालती हैं। सो मैंने निपुणिका को मंडली में आ जाने की अनुमति दे दी। मेरी मंडली की स्त्रियों पुरुषों की अपेक्षा अधिक सुखी थी। बहुत छुटपन से ही मैं स्त्री का सम्मान करना जानता हूँ। साधारणतः जिन स्त्रियों की चंचल और कुलभ्रष्टा माना जाता है, उनमें एक दैवी शक्ति भी होती है, यह बात लोग भूल जाते हैं। मैं नहीं भूलता। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। उस पर की गई अनुकूल टीकाओं को मैं सहन नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने मंडली में ऐसे कठोर नियम बना रखे थे कि स्त्रियों की इच्छा के विरुद्ध उनसे कोई बोल तक नहीं सकता था। जनता में यह प्रसिद्ध था कि बाण भट्ट की नर्तकियां अवरोध में रहती हैं, पर इसका फल बहुत अच्छा हुआ था। मेरी जनता मेरी मंडली को प्यार करने लगी थी। निपुणिका को मैं धीरे धीरे रंगभूमि पर उतारने लगा, पर उनकी अनुज्ञा लिए बिना नहीं। एक दिन उज्जैनी में मेरा ही लिखा हुआ एक प्रकरण अभिनीत होने वाला था। उस दिन परम भट्टारक के उपस्थित होने की संभावना थी। मैंने शक्ति भर आयोजन किया था। मैं उस दिन अपने प्रधान अभिनेताओं को अपनी उत्तम कला दिखाने के लिए खूब उत्तेजित किया था। मन ही मन मेरी इच्छा थी कि पूर्ण आडंबर के साथ अभिनय हो। हुआ ऐसा ही। महाकाल नाथ की सांध्य आरात्रिका के बाद प्रेक्षागृह में लोग जमा होने लगे। नगरी के सभी संभ्रांत नागरिक यथास्थान बैठ गए। नगाड़ा बज उठा और मैंने आडंबर के साथ पूर्व रंग की बीच का अनुष्ठान किया। गायक और वादक यथास्थान बैठ गए और नर्तकियों के नुपुर झंकार के साथ ही वीणा वेणु मूरज और मृदंग मुखरित हो उठे। मैं जब भृंगारधर और जर्जरधर के साथ जर्जर स्थापना के लिए रंगभूमि में आया तो सामाजिकों में अपार औत्सुक्य देखकर गदगद हो गया। मेरा अभिनय बहुत सफल रहा। जर्जर उत्तोलन करने के बाद मैं अत्यंत संतुष्ट होकर नेपथ्यशाला में लौट गया। निपुणिका पहले से ही पुष्पोपहार लेकर वहां मौजूद थी। मेरे इशारे पर एक बार फिर नगाड़े की चोट पड़ी और निपुणिका पुष्पोपहार की प्रमाणांजल लेकर रंगभूमि में अवतरित हुई। यवनिका पर्दे के पीछे से मैं उसके अपूर्ण नृत्य को देख रहा था। वीणा वेणु और मूरज के साथ कांस्य ताल झनझना रहे थे और निपुणिका के निपुण प्रणन को और भी गंभीर तथा और भी मनोहारी बना रहे थे। एकाएक बाजों का बजना रुक गया और उनकी मधुर ध्वन के अनुरणन की पृष्ठभूमि में निपुणिका का कोमल कंठ सुनाई पड़ा। मैं आज निपुणिका का कौशल देखकर विस्मय विमुग्ध हो गया था। गान समाप्त होते ही बाजों के साथ नुपुर के प्रणन की ध्वन सुनाई पड़ी। बहुत ही सुकुमार भंगी से निपुणिका ने अपना उपहार देवताओं को समर्पित किया और अभिराम संचार के साथ धीरे धीरे नेपथ्य भूमि की ओर लौट आई। क्षण भर में मेरे मानस समुद्र में विक्षोभ का तूफान उठा और शांत हो गया। मैं सदा अपने को संभाल सकने में समर्थ रहा हूँ, इस बात का मुझे अभिमान है। मैंने एक बार आग्रह भरी आवाज में पुकारा, न्यूनिया। निपुणिका छिटक कर खड़ी हो गई। उसका बायां हाथ कटी देश पर न्यस्त था, कंकड़ कलाई पर सरक आया था। दाहिना हाथ शिथिल श्यामा लता के समान झूल पड़ा था। उसकी कमनीय देह लता नृत्य भृंग से जरा झुक गई थी। मुखमंडल श्रम बिंदु से परिपूर्ण था। मुझे मालविका अग्नि मित्र की मालविका याद आ गई। मैंने हंसते हुए कालिदास का वह श्लोक पढ़ दिया। निपुणिका संस्कृत नहीं जानती थी, उसने क्या जाने क्या समझा। उसके अधरों पर जरा सी स्मित रेखा प्रकट हो आई और कुछ देर के लिए उसकी आंखें झुक गई। उसी समय उसके शिथिल कवरी बंध से एक मल्लिका पुष्प गिर गया और इस अपराध का दंड उसे तुरंत मिल गया। निपुणिका अपने पादांगुष्ठों से उसे इधर उधर रगड़ने लगी। कालिदास की मालविका का तो जो रूप निपुणिका में अभी तक नहीं आ पाया था वह भी आ गया और मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। मेरा हंसना देखकर निपुणिका ने सिर उठाया। अब की बार उसकी आंखें गीली थी। वह धीरे धीरे वहां से हट गई। मुझे लगा कि मेरा हंसना वह बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं और कामों में उलझ गया। नाटक शुरू हुआ और 5 घंटे तक समारोह के साथ होता रहा। मैं उस दिन बहुत प्रसन्न था। परम भट्टारक के आनंद गदगद मुख से स्पष्ट ही प्रकट हो रहा था कि मैं कल प्रचुर पुरस्कार पाऊंगा। उन्होंने दूसरे दिन राज्यसभा में दर्शन देने का प्रतिवचन दिया। सामाजिकों के भूये युवा साधुवाद के बीच अभिनय समाप्त हुआ। उस दिन का कार्य समाप्त करके मैं आवास की ओर लौटा। निपुणिका को एक अच्छा पुरस्कार देने की बात सोच रहा था कि किसी ने आकर समाचार दिया कि निपुणिका नहीं है। मैं जैसे अनभ्र गर्जन सुनकर चौंक उठा। रात भर निपुणिका की खोज करता रहा पर उसे न पा सका। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन निपुणिका फिर नहीं मिली। मैं राज्यसभा में नहीं जा सका। रह रहकर निपुणिका की गीली आंखें मेरा हृदय कुरेदने लगी। मैं अपने उस अशुभ हंसी से अकाल कुसुम की भांति भय पाने लगा। नाटक मंडली को मैंने 5वें दिन तोड़ दिया और अपने लिखे हुए प्रकरण को शिप्रा की चटुल तरंगों को भेंट कर दिया। तब से आज 6 वर्ष बीत गए हैं। मैंने वह पेशा ही छोड़ दिया है। आज जब फिर एक पुरस्कार की आशा से राज्यसभा की ओर चला हूँ तो सामने वही निपुणिका, उस दिन जिसके अदर्शन ने विघ्न उपस्थित किया था, उसका दर्शन भी क्या आज विघ्न उपस्थित करेगा? अदृष्ट को कौन रोक सकता है? मैंने बड़ी देर तक कुछ बोल न सका, केवल निर्निमेश नयनों से निपुणिका की ओर देखता रहा। वह पान लगा रही थी, पर यह अनाड़ी आदमी भी समझ सकता था कि उसके चित्त में कोई भयंकर उथल पुथल चल रही थी। बहुत दिनों के बाद पान पर फिरती हुई निपुणिका की शिथिल अंगुलियों को देखकर मुझे एक अभूतपूर्व आह्लाद हो रहा था। निपुणिका के अधरों पर मुस्कान थी और आंखों में पानी, वह भी चुप थी। पान का एक बीड़ा एक घटी में लग सका। तब उसने मेरी ओर ताका, आंसू रुक नहीं सके, वे झरते रहे झरते रहे झरते रहे। मैं निर्वाक निश्चल देखता रहा, अश्रु फिर भी झरते रहे। अंत में मैं ही चिल्ला उठा, न्यूनिया रो मत, मेरी वाणी जरूर कातर रही होगी। न्यूनिया अब सिसकने लगी। मैं धड़फड़ा कर उठा कि उसके आंसू पोंछ दूं, फिर तो वह सावधान हो गई। जरा भर्त्सना सी करती हुई बोली, छी छी क्या कर रहे हो, बाजार में बैठे हैं, नहीं देखते? मैंने दृढ़ता के साथ कहा, मैं बिल्कुल नहीं परवाह करता कि हम कहाँ बैठे हैं, मैं तुझे इस तरह रोने नहीं दूंगा। अभागी, तू भाग क्यों आई? निपुणिका ने एक बार फिर कनखियों से डांटा, बोली, पान खाओ। अब तक उसका गला स्वाभाविक हो गया था। मैंने पान ले लिया। जहाँ जा रहा था वहाँ जाना नहीं हुआ। मैं इस अभागिनी के दुख सुख को अच्छी तरह समझे बिना अब उठ नहीं सकता था। बहुत दिनों के बाद अपनी असावधान हंसी के कारण उत्पन्न हुई परिस्थिति को सुधारने संभालने का अवसर मिला था। न जाने मेरी प्रमत्त किलकार ने इस दुखिनी के किस सुकुमार घाव को फिर ताजा कर दिया था। निरंतर 6 वर्षों से न जाने वह कहां कहां मारी मारी फिरी है और इन दिनों न जाने किस अभाग्य के नाले में छटपटा रही है। बाण भट्ट यह सब जाने बिना नहीं टल सकता। इसी सहानुभूति में हृदय ने तो इसे आवारा बना दिया है। जो प्रमत्त हंसी 6 वर्षों से मेरा हृदय कुरेद रही है, उसका प्रायश्चित आज आंसुओं से करना होगा। मुझे इस विषय में कोई संदेह नहीं कि निपुणिका का चरित्र यहाँ के सदाचारियों की दृष्टि में अत्यंत निकृष्ट है। इस दुकान पर बैठे हुए निश्चय ही मैंने अपने को काजल की कोठरी में बंद कर दिया है। सब है पर निपुणिका मुझसे बड़ी मूल्यवान है। सारे जीवन मैंने स्त्री शरीर को किसी अज्ञात देवता का मंदिर समझा है। आज लोगों की आलोचना के डर से उस मंदिर को कीचड़ में धंसा हुआ छोड़ जाना मेरे वश की बात नहीं है। मैंने फिर पूछा, न्यूनिया तू क्यों चली आई, अब तक कहाँ रही, अब क्या कर रही है? मैं तुझे दुखी देख रहा हूँ, तुझे इसी अवस्था में छोड़कर मैं यहाँ से टल नहीं सकता। बता किस बात पर तू भाग आई थी? आज निरंतर 6 वर्ष से मेरा चित्त मुझे धिक्कार रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही तेरे समस्त दुखों का मूल हूँ। एक बार तू अपने मुख से कह दे यह बात गलत है, मैं क्या निर्दोष हूँ?